ओम शांति। आज 16 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर सवेरे शाम को रोजाना इसी लिंक पर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अवश्य सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उससे आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रश्न है तो अवश्य लिखकर भेजें। और आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसको जानने से हम सबको बहुत सहज उन्नति हो सकती है, हमें परमात्म गुणों को शक्तियों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, तो आप अवश्य भेजेंगे, हम उसे मुरली मंथन में शेयर करेंगे ताकि सभी भाई बहने उसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है, ये वंडरफुल सत्संग है। क्यों भाई ये वंडरफुल सत्संग क्यों है? हाँ जी, क्या अलग है इसमें? सत्संग तो सभी सत्संग है, ये वंडरफुल सत्संग क्या है भाई? कैसे असली सत का संग है? वहां पर मंदिर में कितने भगवान बैठे हैं, वो सत्संग नहीं होता? क्यों नहीं होता है सत्संग? वो बताओ उनको, तुम कहानियां बता रहे हो, बताना भैया। ये असली भगत है जो मंदिर में सत्संग हो रहे हैं, दुनिया भर के लाखों भीड़ों भीड़ जहाँ जा रही है, वो सत्संग नहीं है। वो देहदारियों का संग है। जितने भी दुनिया में सत्संग है, वो सत्संग कराने वाला कोई ना कोई देहदारी है। यहाँ भी तो कोई ना कोई दीदी दादा बैठा होता है, देहदारी बताओ। अरे वो भी तो कहते हैं, वो भी कहते हैं हम भगवान तो ना है, वो भी तो ये नहीं कहते कि हम भगवान है। कोई भी संत महात्मा गुरु जी बैठ कर ये कहता हो कि मैं भगवान हूं? तो कैसे सत्संग नहीं है? वो वहां भी तो कोई ना कोई जो सच बोले जो सच सुने। अब प्रॉब्लम तो ये ना, सच का हम डिसाइड कैसे करें? सच क्या है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब झूठ है। तो ये राम भी झूठ है, कृष्ण भी झूठ है, जितने 33 करोड़ देवी देवता है, ये सारे झूठ है। 33 करोड़ देवी देवता है, सारे झूठ। तो सच फिर क्या होगा? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए सच है। जो दिखाई नहीं देता है ना, वो सच होता है। उसको माने क्यों? आपकी बात बड़ी अजीब है, या तो जो दिखाई ना दे वो सच है, ये कोई बात होती है? हम उसको माने कैसे, ये बताओ। अच्छा भाई चलो, आप कहते हो जो दिखाई नहीं देता सच है, हम उसको माने क्यों? नहीं, जो चीज विनाश को पाता है, तो हमारे सामने जो चीज है दिखाई दे रही है, ये विनाश को पाती है, हमने मान लिया चलो। परंतु अब जो दिखाई नहीं देता, हम उसको कैसे माने कि वो सच है?
ज्ञान,
ज्ञान का तीसरा नेत्र किसने दिया आपको? तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र परमपिता परमात्मा ही आकर देते, और जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो आयोनी है, जो सर्वज्ञ है, वो पराये शरीर का आधार लेकर ये सत्य समझाता है। उसका अपना शरीर नहीं है। हम यहां तक कह सकते हैं उसके पास अपना शरीर बनाने की ताकत भी नहीं, वो बना नहीं सकता, क्योंकि जिसने शरीर धारण कर लिया वो जन्म मरण के चक्र में आता रहेगा। जो इस जन्म मरण के चक्र में आता रहेगा वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर है वही परमात्मा।
भाई परमात्मा कहाँ रहता है? जब कोई भी कार्य करना होता है वो भी तो सहारा लेता है, शरीर में ही तो आता है।
वो पराये शरीर का आधार लेकर, हाँ, पराये शरीर का आधार क्यों लेता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि पराये शरीर का आधार क्यों लेता है। परमात्मा कहते बच्चे जिसने शरीर ले लिया वो, हाँ जी,
जन्म मरण के चक्कर में आता है वो परमात्मा हो नहीं सकता।
हाँ, जो पर जन्म मरण, परंतु इनका प्रश्न ये है कि वो परमात्मा जो शरीर धारण नहीं कर सकता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकता, तो वो फिर परमात्मा कैसे? यही आपने तो मान लिया, परंतु जो नहीं मानता कि परमात्मा आता नहीं, जब वो शरीर नहीं बना सकता, वो परमात्मा क्या है? जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकता वो परमात्मा क्यों है? प्रश्न तो अपना है ना, तो इसके लिए भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमपिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय करता है, भोगता होता है, वो भोगी होता है। और परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग में भी सभी कहते हैं वो अभोगता है। यदि वो भी भोगने लगेगा तो उसके भी गुण और शक्तियां क्षय होंगी, इसलिए वो देह में नहीं आता, भोगी नहीं बनता। गीता में भी लिखा गया, सभी शास्त्रों में लिखा गया, सभी धर्म ये बात मानते हैं कि यदि परमात्मा भी भोक्ता बनेगा तो उसके भी गुण और शक्तियां क्षय होंगी, इसलिए परमात्मा अभोक्ता रहता है। और वो देखता है कि जब सारा संसार एकदम तमो प्रधान पतित हो गया है तो वो पतित शरीर का आधार लेकर, परमात्मा कहते मैं पतित शरीर का आधार लेकर तुम पतितों को पावन बनने की विधि सिखाता हूं। मैं कोई कर्म तुम्हारी तरह देह धारण करके नहीं करता। यदि मैं भी देह को धारण करके तुम्हारी तरह कोई भी कर्म करूंगा तो मैं भी भोगता हो जाऊंगा, और भोगता होते ही मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊंगा। यदि मैं तुम्हें भी दैहिक सुख या दुख दूंगा तो मेरे ही बनाए हुए नियम के अनुसार मुझे भी वो दुख और सुख लेना होगा। ये सभी धर्म इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि परम आत्मा भी जो नियम बनाए हैं उन नियमों को स्वयं पर पालन करता है। ये जो संसार वाले हैं, ये जो कानून बनाते हैं, ये दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते, अपने को उसमें से निकलने का रास्ता रखते हैं, जिसके कारण दुनिया में दूसरों को भी वो रास्ता मालूम हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये कानून यदि मुझे भी अपने ऊपर फॉलो करना पड़ा तो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा क्लू, ऐसा रास्ता रखता है ताकि वो उसमें से निकल सके। तो हमें समझ में आ गया होगा कि परमात्मा को भी अपने बनाए हुए नियमों को अपने ऊपर चलाना होता है, इसलिए वो अभोक्ता रहता है। परमात्मा कहते हैं यदि मैं जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर कोई और चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्र से निकालने की विधि सिखा सके, इसलिए मैंने ये नियम बनाया है कि मैं अपने आप को कभी भी शरीर धारण नहीं करूंगा, मैं सतयुग में नहीं आता हूं, मैं सतयुग का मालिक नहीं बनता हूं, मैं इस संसार का मालिक नहीं बनता हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक, मैं इस संसार को भोगता नहीं। इसलिए ये वंडरफुल सत्संग है, इसमें पढ़ाने वाला स्वयं अशरीरी है और ये पढ़ाता भी उनको है जो अशरीरी हो जाए, जो अशरीरी नहीं हो उसको भी नहीं पढ़ाता। इस पढ़ाई का प्रयोग अशरीरी बने लाभ नहीं उठा सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक हम देह समझ कर रहेंगे तब तक हम ईश्वरीय ज्ञान से लाभ नहीं उठा सकते। लाभ उठाने के लिए हमें परमात्मा की तरह अशरीरी बनना होगा। सीख सकते हैं, जान सकते हैं, देह में जानकारी ले सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग हमें बिना शरीर के करना, तभी हम अपने आप में चढ़ती कला में जा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा योग में शरीर का प्रयोग नहीं करना, यदि शरीर का प्रयोग किया तो वो मेरे साथ योग नहीं होगा, मेरे साथ कनेक्शन नहीं होगा। चाहे आंखों से कोई चीज देख रहे हैं तो वो जो चीज आप देख रहे हो वो मेरे साथ आपका संबंध जोड़ने में बाधक है। कानों से आप सुन रहे हो तो वो मेरे साथ संबंध जोड़ने में बाधक है। बड़ा क्लियर समझना है, शरीर का जहां आधार लेकर मेरे साथ संबंध जोड़ा तो आपका योग मेरे साथ नहीं लग सकता, क्योंकि आपके ऊपर वो रबड़ चढ़ा हुआ है जो आपको करंट आने नहीं देगा। ये सत्संग वंडरफुल सत्संग है, ऐसा सत्संग दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। हां जी, मैं आत्मा हूं, मैं यदि देह के लिए प्रयोग किया तो ये अशुद्ध अहंकार हो जाता है। मैं आत्मा संग, हां जी,
मैं लग गया तो उसको अभिमान आ गया,
नहीं, मैं आना परमात्मा ने हमें समझाया मैं आत्मा हूं ये शुद्ध अहंकार है, मैं देह हूं ये अशुद्ध अहंकार है, क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसको मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में मैं आत्मा हूं, मेरी देह है, मैं देह नहीं हूं, मेरी देह को मैं देह बोल रहा हूं,
आत्मा की देह,
हाँ आत्मा की देह है, आत्मा ने इस देह को धारण किया है, देह आत्मा को धारण नहीं करता। आत्मा जब चाहे पाठ पूरा हुआ इस देह से निकली, इस देह की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर अपनी पहचान देते हैं, सत्य की परिभाषा देते हैं। जो विनाश हो जाए वो सत्य नहीं, जो हमेशा था है और रहेगा वो सत्य है। आत्मा और परमात्मा हमेशा थे हैं और रहेंगे ये सत्य है। ये सत्य ज्ञान स्वयं परमात्मा देते और आकर सत्य का ही परिचय देते। परमात्मा के लिए सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, और उसका यदि हम संग कर रहे हैं तो ये सत्संग है। यदि हम उसका संग नहीं कर रहे हैं तो ये सत्संग नहीं है। हम जिनका संग कर रहे हैं संसार में, वो चाहे कोई भी हो, 33 करोड़ देवी देवताओं वाला हो या कोई और हो, उसका संग कर रहे हैं, उसको हम परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, जिसको माना जाता है वो परमात्मा नहीं होता। हमें कहा गया मानो तो भगवान है नहीं तो परमात्मा है, हमने उसे मान लिया और हम इस बात को जानते हैं, माना उसे जाता है जो होता नहीं, जो होता है उसे माना नहीं जाता, जिसके लिए हमने समझ लिया था कि हम अपने पिताजी की उम्र के किसी भी बुजुर्ग को पिता मान लेंगे, परंतु अपने पिताजी के लिए कोई कहे कि मान लो ये तुम्हारे पिताजी है, नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इसको मानूं क्यों। तो परमात्मा को कभी माना नहीं जाता। परमात्मा तो पिता है, उसे मानने की जरूरत नहीं है। तो ये सत्य परमात्मा आकर समझाते हैं, संसार में जितने भी हैं उनको माना गया है, जो दिखाई देते हैं उनको माना गया है, वो परमात्मा नहीं। यहाँ परमात्मा को मानना नहीं है, परमात्मा से जानना है। परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं तभी वो ज्ञान का सागर है। किसी ने आकर के ज्ञान दिया हो तो बताओ, 33 करोड़ देवताओं में से किसी ने बैठकर ज्ञान दिया हो तो बताओ। कहेंगे कृष्ण ने दिया, तो कृष्ण ने खुद ज्ञान नहीं दिया, वो व्यास ने बैठकर लिखा, व्यास ने लिख दिया कि कृष्ण ने सुनाया और हमने मान लिया। देहधारी की बात को मानना माना झूठ सत्य। संसार में जितने भी हैं, चाहे वो बाहर के इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, जितने भी दुनिया भर के धर्म हैं, जितने भी सत्संग हैं, उनमें किसी ना किसी देहधारी के द्वारा दिए गए ज्ञान को माना जाता है। तो यहाँ आकर अशरीरी परमात्मा हमें अशरीरी आत्माओं को पढ़ाता है और आप भी सब आत्माएं पढ़ती हैं, इसलिए ये एक वंडरफुल सत्संग है। जहां आत्माएं पढ़ती हैं, और यहां पढ़ने के लिए किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ को बीच में नहीं लाया जा सकता, या किसी उम्र की आत्मा, चाहे 1 साल का बच्चा है, चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे 60 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का बच्चा है, सभी आत्माएं एक साथ पढ़ती हैं। सभी के लिए एक ही चैप्टर होता है, अलग चैप्टर नहीं होता, अलग बात नहीं होती। इसलिए ये कैसा सत्संग है, वंडरफुल सत्संग, जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। बाकी सत्संग वाले कहते हैं आपको मरने नहीं देंगे, पर तो यहां बताया जाता है तुम अमर हो, तुमने जीते जी मरना है, पर जीते जी मरना माना अपने सत्य स्वरूप में स्थिर रहना है, और अपने जो देह के कारण झूठे धारणाएं बनाई थी उन झूठी धारणाओं को अपने जीवन से निकाल देना, झूठी धारणाओं को निकाल देना है। सत्य धारणाएं जो मैं आकर दे रहा हूं वो आपने धारण करनी है। तो ये है जीते जी मरना। हमें जीते जी वाल्मीकि की तरह, जैसे वाल्मीकि एक डाकू था और सुधर गया, और अब हमें जीते जी जो भी हमने देह के संस्कार अपने जीवन में धारण किए थे उनको निकाल कर केवल रूहानी संस्कार अपने जीवन में धारण करने हैं। ये है जीते जी बनना। हमें देवता बनना है। आज सारी दुनिया आसुरी बन गई है, आसुर से देवता बनाना सिखाने वाला परमात्मा कल्प कल्प आकर के सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता है। यह है वंडरफुल सर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही केवल परमात्मा आकर पढ़ाते हैं और कहीं से भी नहीं पढ़ाते। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्र आता है भाई? तुम्हें कौन सी फिक्र लगी हुई है? एक फिक्र आता है तुम्हें। अब तुम्हें कोई फिक्र लगी हुई है? अब घर जाने की फिक्र लगी हुई है। बाबा क्या कहते हैं देखो। हाँ, अब कुछ पता लगेगा ना, सच सच तो अब बाबा बताएगा ना। हाँ, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है, घर जाने से पहले यहाँ संपन्न बनना है। जैसे आए थे जितना पवित्र आए थे उतना पवित्र बनना है, बिना उतना पवित्र बने घर नहीं जा सकते। चाहे रोकर बनो तो चाहे हंसकर बनो, प्यार से बनो या मार खा के बनो। ये फिक्र है कि जल्दी जल्दी हम संपन्न बने। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं उन्हें मनुष्यों को देवता बनने की होगी, सॉरी उन्हें देवता बनाने की होगी। होगी किसे कहते हैं? आदत, यानी उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत होती है। वो खाली बैठ नहीं सकते, इधर उधर की बातों में एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मौका मिलेगा जो सामने आएगा उसको कहेंगे आजा मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई इधर आ। मुंह से नहीं बोलेंगे पर तू अंदर से, जब ये समझ लिया ये मेरे बाप का बच्चा है, ये मेरा भाई है, अब इसे भगवान से बाप से ना मिलाऊं तो ये मेरी गलती है ना, तो मैं उसे बाप से मिलाए बिना नहीं रह सकता। जिसको ये बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरे बाप का बच्चा है, वो उसे बाप से ना मिलाए, ये वो रह नहीं सकता। वो अवश्य उसे बाप से मिलाने के लिए अपनी युक्तियां चलाएगा। और उसे ये मालूम है कि हर आत्मा ने चलना अपने पाठ के अनुसार, मानना अपने पाठ के अनुसार है। वो कभी दुखी नहीं होगा कि मैंने इसको इतना बताया ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये तो सुधर ही नहीं सकता। नेवर, वो हमेशा कोशिश करता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा, उसे समझाता रहेगा। मानना ना मानना वो उस आत्मा का पार्ट है, वो कभी स्वयं हलचल में नहीं आएगा। उसकी आदत होती है जो मिले मुझे उसे कुछ ना कुछ परमपिता परमात्मा का देना है, ताकि वो किसी तरीके से पसंद आ जाए उसको। परमात्मा की एक बात भी किसी के गले उतर गई, उसे समझ में आ गया ये वाक्य में ही परमात्मा है, तो वो अपना अधिकार लेने के लिए परमात्मा को चिपक जाएगा। वो हमारे बाप को चिपक जाए, हमें दुख नहीं होगा? नहीं होगा, खुशी होगी। मेरे को बाप ने छोड़ दिया, उसको चिपका लिया, बच्चे तो मार देते हैं। छोटे बच्चे को उठा लो, बड़ा बच्चा कहता फेंक इसको, मैं मेरा अधिकार तुमने। हाँ जी, क्योंकि हमने पहले समझ लिया, उस बेचारे को नहीं पता कि ये मेरा भाई है, पर तो हमें पता है कि ये मेरा भाई, मेरे पकड़ने के अधिकार को ये नहीं छीनेगा। ये पकड़ेगा इसका मिलेगा, मैं पकड़ूंगा मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेरे बाप के तो मतलब पास सब कुछ इतना है, सारे जितना लेना चाहो ले। हमें पता, उस बेचारे को नहीं पता, उसको पता है एक माँ है और एक माँ ने इसको उठा लिया, मेरी तो वैल्यू खत्म हुई। कल तक मुझे उठाए घूमती थी, आज मेरे को फेंक दिया। पर तो यहाँ हमारा बाप उसको भी उठा लेता है और हमें भी उठा लेता है, हमें भी अपने दिल कष्ट पर बिठाए देता है, उसको भी बिठा लेता है, जितनी आत्मा है सबको बिठा लेता है। एक अजीब दिल कष्ट है उसको, क्या करे। मुरली पढ़े कि बाबा की बातों को याद करे। हाँ जी, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकता, جن کی طرح بھاگتا رہے گا. بس ایک ختم کام ختم ہوا کام دو. جن کہتا ہے ایک کام ختم ہوا کام دو, کام نہیں دیں گے تو میں کھا جاؤں گا. بتاؤ جن کی طرح وہ بھاگتا رہتا ہے, ایک کو سمجھایا اور دوسرا دکھائی دیا, دوسرے کو شروع ہو جائے گا, اس کو کوئی اور کام ہے ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ برہما کماریا پاگل ہے. جن کو یہ کام سارا دن ایک ہی تات لگی رہے اسی کو کہتے ہیں پاگل ہے. اس کو آگ لگی ہوئی ہے پرماتما کی, سب کو پرماتما کا بچہ بنانا ہے تو پاگل تو ہوگا ہی. جس کو آگ لگ جائے گی وہ تو سدھر جائے گا, یہ بھی سمجھ. بٹی پہ تو وہی رہ سکتا ہے جس کو آگ لگی. ہاں ہاں اس کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. سروس کے ساتھ ساتھ سوئم کو بھی سمپن بنانے کی چنتا ہوگی, کیونکہ جب دوسروں کو سدھارنے پہ لگا ہے, ایک انگلی دوسروں کی طرف ہے تو تین انگلیاں اس کی اپنی طرف بھی ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی سدھارنے میں لگا رہے گا. یہ فکر آتا ہے ہمیں تو کیا کیا ڈھونڈ کے لاتا ہے بابا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اوم سب روحانی باپ بیٹھ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں, روح اب ساکار میں ہے اور پھر پرجا پتا برہما کی سنتان ہے کیونکہ ایڈاپٹ کیا ہے, کیونکہ ایڈاپٹ کیا اس لیے کس کی سنتان ہے, پرجا پتا برہما کی سنتان ہے. دھیان سے سمجھ رہے نا, روح اب ساکار میں ہے اور پھر پرجا پتا برہما کی سنتان ہے کیونکہ ایڈاپٹ کیا ہے. پرجا پتا برہما ہمارا باپ ہے کیونکہ اس نے ہم جیو آتماؤں کو ایڈاپٹ کیا ہے. شیو بابا آتماؤں کو ایڈاپٹ کرتا ہے. تمہارے لیے سب کہتے ہیں یہ بھائی بہن بناتی, کیونکہ برہما کے بچے ہیں تو ہم آپس میں کیا بنتے ہیں, برہما کمار برہما کماری بھائی بہن. بچوں کو باپ نے سمجھایا ہے اصل میں تم آتمائیں بھائی بھائی ہو. برہما کے بچے تم بھائی بہن ہو, بھائی بہن بھی تمہاری درشٹی خراب ہو جاتی ہے, پرنتو تم یہ سمجھو ہم اصل میں پرماتما کی سنتان ہے. پرماتما نے ایڈاپٹ کیا ہے, برہما ہمارا پتا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بھی ہے. ہاں ماں بھی ہے, برہما ہماری ماں ہے, ہم سے بابا کے بچے ہیں اور ہم آتمائیں آپس میں بھائی بھائی. بس اب نئی سرشٹی ہوتی ہے تو پہلے پہلے براہمن چوٹی چاہیے. نئی سرشٹی کے لیے ٹاپ چاہیے نا, ٹاپ بنائیں گے بٹن والے اپنے آپ بٹن تک سب اپنے آپ ہو جائیں گے. جو پوری محنت کریں گے وہ 100% ٹاپ کے براہمن بن کے ستیوگ کے آدھی دیو بن جائیں گے, اور جو جتنی کم محنت کریں گے اپنے آپ. بابا تو ٹاپ کی پڑھائی پڑھاتا ہے, باقی آتمائیں محنت کر کے اس ستسنگ سے جتنا ان کا محنت کرتے ہیں اتنا اپنا پد پا لیتے. ابھی ٹرانسفر, تم شودر تھے ابھی ٹرانسفر ہوئے ہو, براہمن بھی تو چاہیے ضرور. پرجا پتا برہما کا نام تو بالا ہے, اس حساب سے تم سمجھتے ہو ہم سب بچے بھائی بہن ٹھہرے. جو بھی اپنے کو برہما کمار برہما کماری کہلاتے ہیں وہ ضرور بھائی بہن ٹھہرے. سبھی پرجا پتا برہما کی سنتان ہے تو بھائی بہن ضرور ہونا چاہیے. یہ سمجھانا ہے بے سمجھوں کو, بے سمجھ بھی ہیں اور پھر بلائنڈ فیتھ بھی, بے سمجھ بھی ہیں اور پھر اندھ وشواسی بھی ہیں. جن کی پوجا کرتے ہیں فیتھ رکھتے ہیں یہ فلانا ہے, پرنتو اسے جانتے کچھ بھی نہیں. یہ فلانا ہے پرنتو اسے جانتے نہیں, مانتے ہیں رام بھگوان ہے پرنتو جانتے نہیں کہ رام بھگوان کیسے بن گیا. بھائی کیسے بن گیا, اس نے کیا ایسا کام کر دیا جو اسے بھگوان کہنا پڑا, ایویں کہہ دیا. روتا پھرتا ہے, پتنی بھاگ جاتی ہے, جنگل میں بھٹکتا پھرتا ہے, نہیں اور اس کو بھگوان پکڑ کے بنا کے بٹھا دیا. کیا کیا اس نے, بوڑھا ہو گیا یدھ نہیں کر سکتا, بچوں کے آگے جھک جاتا ہے پھر مر جاتا ہے. جو مر جائے وہ بھگوان کیسے, بولے جی مرا نہیں, وہ سری ندی میں چلا گیا. اور ابھی سری ندی میں گیا شریر سے, اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے دکھائی دیا ہو بھائی, وہ ڈوب کے مر گیا تو نہیں مرا, اور کیا وہ पानी में चला गया, जल समाधि ले ली, तो क्या वो मरना नहीं हुआ? आप से शरीर को डालोगे तो वो तो मरेगा ही ना, तो मर गया तो मानना पड़ेगा ना, मर गया। अब कबीर के लिए कह देते नहीं मरा, उसके फूल रह गए थे, अरे भाई कहां गया फिर वो शरीर जो बना है? वो शरीर तो नष्ट होगा होगा ना। अब गपोड़े बना के रख दे जी, वो तो खत्म हो गया था, कुछ था ही नहीं वहां पर। ऐसे ऐसे कहानियां घर के रख देते हैं कि उसके फूल देखा वो फूल थे। अरे लहदियों को फूल तो कहा जाता है, तो जब उसको संस्कार कर दिया तो उसके फूल हड्डियां ही रह जाएंगी और क्या रह जाएगा? क्या गंगा जी में डालो या ना डालो, गंगा जी में डालो या ना डालो, उसके ऊपर चाहे मकबरा बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि हिंदू कहने लगे कि हम जो उसको जलाएंगे, वो कहने लगे कि हम इसको दफनाएंगे, और वहां जाके देखा तो बॉडी नहीं थी, फूल पड़े हुए थे। कौन से फूल पड़े थे? उन्होंने ये वाले फूल रख दिए। अब कहानियां गढ़ने में तो कुछ भी गढ़ दो, अब वो जिस समय हुआ था उस समय का कोई जिंदा हो कोई बताए तब तो है। अब आगे वाले अपनी जो मर्जी आती है कहानियां जिसके साथ जोड़ देते हैं। हाँ, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु वो कब आए, लक्ष्मी नारायण कब आए पता ही नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने पता ही नहीं है, फिर वो कहाँ चले गए पता ही नहीं है। वो आके दिखाई तो दे कभी, परमात्मा आके दिखाई तो दे रहा है ना, पढ़ा तो रहा है ना, आके समझा रहा है, वो परमात्मा कैसे जो फिर मिले ही ना। एक हमारा पिता है तो हमें मिलना तो चाहिए। कोई भी नहीं जानते, कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी सब पता है। अगर बायोग्राफी का नहीं जानते तो वो क्या काम था? पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास हो गए हैं, जो बड़े बड़े बीत गए हैं, उनकी एक भी जीवन कहानी को नहीं जानते। संतोषी माता ने क्या किया भाई, कब पैदा हुई, क्या किया था, उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये पता है कि उसका व्रत नहीं रखा, उसका व्रत रखा तो उसके सारे दुख दूर हो गए, नहीं रखा तो वो दुखी हो गए। ये गपोर कहानियां बना के रख दी। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते हैं वो तो पत्थर बिक्कर ठिक्कर कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है। क्या ये जीवन कहानी है कि वो कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है? तो अकल की बात नहीं हुई ना। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, सारे कहते हैं हे पतित पावन, स्वीकार करते कि हम पतित हैं, सारे कह रहे हैं। कोई भी धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि हे भगवान हे खुदा हो गॉड आओ हमें इन दुखों से छुड़ाओ, जो दुखी ना हो। नानक दुखिया, जब दुखी है वो सारा परमात्मा को पुकार रहे हैं, पुकारने का तरीका उनका अलग है, परंतु वो पुकार किस लिए रहे हैं, आकर हमें इन दुखों से छुड़ाओ। दुखी होने का मतलब हमने कोई ना कोई पाप कर्म किए, पतित हैं, हमें पावन बना। बाबा कहते पतित शब्द कितना अच्छा है, अब हमें बॉटम में है, हमें श्रेष्ठाचारी बनाओ, नेकी की राह पे चलाओ, बदी की राह से हटाओ। प्रेयर कहीं की भी देखे, बोलने के तरीका कुछ भी हो सकता है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, परंतु सीधी सी बात हमें समझा रहे हैं। हम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड औलाद है। ब्रह्मा ने हमें किसी से पैदा नहीं किया, जैसे झूठ गपोर कहानियां उन्होंने लिख दी हैं, उन गपोर कहानियों की तरह हमें पैदा नहीं हुआ। हम कुख वंशावली नहीं है, हम मुख वंशावली एडॉप्टेड है, मुख वंशावली के साथ समझाना है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के, मतलब गंदे ख्यालात जो आते हैं वो काम बेकार के ही आते हैं। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब शिव बाबा की संतान भाई भाई। ये दो बातें एक साथ याद रखनी है। ये भी पक्का है दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वो एक है, उन उनको सब पुकारते हैं, तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं, वो है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है, शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है, आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, ये तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप, मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं, तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे, बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने, तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते, कहाँ नहीं आ सकते, कहाँ मधुबन में नहीं आ सकते, छे बाबा के पास पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे तो शिव दादा के पोत्र बनेंगे, तो शिव दादा से आपको वर्षा मिलेगी। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं, जब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ कैसे सकते, जब तुम्हें समझ में आ जाए कि वाक्य में शिव हमारा बाप है, ब्रह्मा हमारी माँ है, ब्रह्मा हमारा बाप है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, जब ये समझ में आ जाए तब आप पढ़ने के लिए आ सकते। ये बेसिक कोर्स करके ही समझ में आता है, तब आप सभा में परमात्मा के पास पढ़ने के लिए बैठ सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है, अनेक प्रकार की परियां गाई जाती हैं, गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, ये तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां और परीजादे, सतयुग में हम होते हैं परियां और परीजादे, वहां हमें कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल ब्यूटी होती है, खून होता है, लाल रंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ खून
सफेद आदमी क्या लाल हो गया,
हाँ
क्या जरूरत है, बाल बताना,
हाँ
क्या कह रहे
हैं, ये बाल जो काले कर रखे हैं ये नकली है ना,
हाँ।
असली बाल थोड़े है काले, हाँ
यहाँ भी झूठ हो,
ये आपके सिर के बाल काले नहीं है, तो लाल मेहंदी लगाई,
लाल मेहंदी कभी नहीं लगाया।
चलो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें रंग नहीं लगाना, ठीक है। सचिव में तुम बनते हो परियां परिजादे, अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते, ये है वो ज्ञान सागर। पानी की सागर में कोई ऐसा पानी का तालाब या पानी का सरा सागर नहीं है जिसमें डुबकी लगाओ और आप परियां बन जाओ, यहां परियां बन जाते हो, क्योंकि यहां आप एकदम सच्चाई समझ में आ जाती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई वजन ही नहीं, आत्मा ही उड़ती है। हमें समझ में आ गया संसार का कोई बंधन मुझे रोक नहीं सकता, मैं निर्बंधन हो जाता हूं। सारी बात समझने की है। जब तक मैं बंधन 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 समझता रहूंगा तब तक बंधन है, परंतु जैसे समझ में आ गया बंधन खत्म। परियां माना देवी देवता, परियां बनना माना देवी देवता बनना, बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बात है, सदा खूबसूरत है, वो मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश कर। जो हसीन मुसाफिर है,
सांवरे तन में,
हसीन माना सुंदर, क्या कहने। और पुरुष सुंदर होता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा हुसैन। हसीन कहा जाता है फीमेल को, हुसैन कहा जाता है पुरुष को। हाँ, मतलब सबसे सुंदर वो हुसैन, मतलब वो समझते हैं कि वो सबसे सुंदर है। परंतु यहाँ परमात्मा ना स्त्री है और ना ही पुरुष, उसे जो मर्जी कह दो। हम बनने वाले जो बनेंगे देह धारण करेंगे, हम यदि देह धारण करेंगे पुरुष की तो हम हुसैन, हम यदि देह धारण करेंगे स्त्री की तो हम हसी। तुमको ऐसा बनने के बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े, बनाना पड़े ना, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है, उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कोई कम, जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतना कॉलेज निकालते रहते हैं, बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते हैं रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए जहां बहुत बच्चे बहुत आकर पढ़ेंगे, फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाए, देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है मनुष्य से देवता की एक करत न लागी। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया और वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है, दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता, वहाँ है सब देवताएं, मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वे है देवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया, राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था, कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारका के लिए भी कहते हैं, अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया, सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, सारी दुनिया क्या होगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े। कितना अथाह धन था, बाप ने समझाया है एक ही सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितनी बारी लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी क्या भारत को स्वर्ग कहेंगे, मतलब कितनी कमाल की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात स्वीकृत की जाती है कि भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाता है, स्वर्ग बनाता है शिव बाबा और नर्क बनाता है रावण। तुम जान गए हो रावण राज्य कितना समय चलता है, कितना समय चलता है रावण का राज्य,
2500 वर्ष।
वे भी बताया है रावण राज्य में कितना अथाह धर्म हो जाते हैं, और राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो ये पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता, और किसी की बुद्धि में भी नहीं आ सकती। वे तो है ही रावण राज्य, राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हैं, नालायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं की लायकी की महिमा, देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते रहते हैं, महिमा गाते रहते। बाप समझाते हैं तुम जब पूजे थे तो नई दुनिया, तुम जब पूजे थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे, अभी तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम्हें क्या होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वे कहते हैं फिर फिटकार पिटाते हैं, तुम भाई बहन बनते हो और वो कहते हैं क्या करते हैं, ये हमारा घर पिटाते हैं। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना, भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्म, मिसाल तो एक का बताएंगे ना, बाकी सब अपने आप समझ सकते हैं। तुम्हारी डिनेस्टी बनने वाली है, कितना जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा झाग है, क्योंकि मुरली जब चली है, साकार मुरली है, उस समय कितनी थोड़ी सी आत्माएं थी, तूफान भी बहुत लगते हैं, सत्युग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, ये तूफान, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहां तो माया का तूफान होता नहीं, सत्युग में माया का तूफान होता नहीं, वहां तो बैठे, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते। यहाँ एक भाई ने पूछा है कि ये वहां क्यों कहते हैं, स्वर्ग तो होता तो यही है, फिर वहां क्यों कहते हैं, यहां और वहां, जब स्वर्ग भी इसी धरती पर होता है, नर्क भी इसी धरती पर होता है, हम नर्क में बैठे हुए हैं, नर्क को यहां कह रहे हैं और स्वर्ग को वहां कह रहे हैं, क्यों? तो क्या जवाब देगा, कौन बताएंगे इसका जवाब भाई? अब ऐसे ऐसे प्रश्न आप पूछ लेते हैं। हाँ जी, फिर वहां क्यों बोला, यही कहना चाहिए। हाँ जी, कौन बोलेगा? जब नर्क है तो स्वर्ग नहीं है, और जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं है। भाई रात भी यही है, दिन भी यही है। जब रात होती है तो दिन नहीं होता, दिन होता है तो रात नहीं होती है। फिर रात भी यही है, दिन भी यही है, हम वहां क्यों बोल रहे हैं? दिन के लिए वहां कह रहे हैं और रात के लिए यहां कह रहे हैं। वहाँ आपने वहाँ क्यों कहा? वो स्वर्ग भी तो यही होता है ना, यहाँ क्यों नहीं बोलते हो आप? हाँ जी, हाँ, समय का समय का अंतराल ज्यादा होने के कारण और फिर अवस्था में भी अंतर होता है। जब यहाँ स्वर्ग होता है तो यहाँ नरक नहीं होता जैसे कहा गया, परंतु उसमें अंतराल भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ रात है और दिन है तो यही बिल्डिंग रहती है, यही सामान रहता है, जो जो कुछ जा रखे यही होती है। तो रात को भी यहाँ बोलेंगे, दिन को भी यहाँ बोलेंगे, यहाँ समय का अंतर बहुत कम है। परंतु वहां इसलिए बोला जाता है कि जो इस समय का भारत है, इस नर्क का जो भारत है, तब जो भारत होगा वो ऐसा नहीं होगा, यहां की कोई भी चीज वहां नहीं होगी और वहां की चीज यहां नहीं है। जो सामान इसी स्वर्ग में था वो आज नहीं है, तो जो अब नर्क में है वो स्वर्ग में नहीं है। तो दोनों की अवस्था में भी, दोनों की रचना में भी अंतर है। इसलिए समय का अंतर और रचना का अंतर, आज भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, पंजा टूटा हुआ है और तब सारे टुकड़े जुड़े हुए होंगे, इसलिए यहां और वहां का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो कुछ इस समय है उस समय वो नहीं होता, तो इसलिए उसको दिखाने के लिए, उसको अलग करने के लिए वहां बताया जाता है। वहां वो चीजें नहीं होती जो अब यहां अवेलेबल है, और जो वहां अवेलेबल होती है यहां नहीं होती। यहां तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर माया के साथ, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वे भी हैरान करती है। सत्युग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। रावण राज्य, राम राज्य का और कोई समझते ही नहीं है, बस सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात नहीं होती है। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस बसे बदल कर बगुला बन जाते हैं, फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे या स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान, तुम हो महावीर महावीरनिया। नंबर वार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही ये महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है पांच विकार, ये तो समझ की बात है, अभी तुम समझते हो, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है तो वे जाकर सर्विस करते हैं, बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती, उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या, उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो, तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए। और खबरदार भी रहना चाहिए, पोजीशन तो नंबर वार होती ही है। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ कर समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, नंबर वार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, ये है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस नहीं हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए, नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानों वाद, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानों वाद समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। श्री कृष्ण क्या हुआ? नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर वन ये है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार, अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा, उनको सर्विस के बिना कोई सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाती है। हमें मनुष्य से देवता बनाने की आदत लग जाती है, मौत के पहले ही पास होता है, क्योंकि मौत के बाद तो कुछ होगा नहीं ना। मौत से पहले ही हमको अपने आप को संपन्न बनाना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलिमिटीज भी आएंगी। और कुछ बताएं फिर? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। महावीर के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की पे बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। मनुष्य मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फूल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपने फूल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगी। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को चैकिन में बिंदु लगा सके, चैकिन में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।